जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद चौथा अध्याय और इसका दूसरे प्यार से जो है हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आप सुनिए और बारहवें प्यार को जो है हम सामूहिक रूप से जो है उच्चारण करेंगे। तो आप में से कुछ भक्त लोग जो है यहाँ पे हम देख पा रहे हैं श्रोतागणों में बिल्कुल नए हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है, अध्याय भी अभी शुरू हुआ है। तो आप स्टोरी के बीच में नहीं आए हैं, स्टोरी का जो अभी बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड इस तरीके से है कि अभी श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो जगन्नाथपुरी की यात्रा को जा रहे हैं। वैसे तो अगले हफ्ते हमारे भक्तगण भी सब जगन्नाथपुरी की यात्रा को जा रहे हैं, तो बड़ा एप्रोप्रिएट टॉपिक है। तो रूट भी ऑलमोस्ट सेम होगा, बस डिफरेंस ही होगा महाप्रभु पैदल थे हम ट्रेन में होंगे। आवाज नहीं आ रही बड़ा भाई तो माइक हो तो फिर पता हो कि माइक चल रहा है, ना या तो ना हो तो पता है जिसी से करना है जो करना है। आप लोग थोड़ा आगे आगे आ सकते हैं अगर सुनना है तो। कुछ लोग मतलब इंतजार कर रहे होते दर्शन खुलेंगे तो उसमें तब जाएंगे, तो इसलिए हम इतना नहीं करते, अदरवाइज आगे आ सकते हैं। खाए तो जगन्नाथपुरी की यात्रा है अभी, नहीं श्री चैतन्य महाप्रभु की। जैसे कई बार होता है कि मैगजीन्स में बैक टू गॉडहेड में या किस में कोई यात्रा लेके जाते हैं तो उस ट्रिप का जो है जानकारी मिलती है, ऐसे ट्रिप गए ऐसे गए, तो उस तरीके से पहली ट्रिप की जानकारी जो है महाप्रभु की हमें मिल रही है चैतन्य चैतन्यामृत में। तो हम दूसरे प्यार से शुरू करते हैं। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद के। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत प्रभु की जय हो, एवं श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तगणों की जय जयकार हो। क्योंकि अध्याय का प्रारंभ हो रहा है तो इस तरीके से मंगलाचरण कर रहे हैं कविराज गोस्वामी, और इसके आगे तीसरा और चौथा प्यार इकट्ठे हैं। नीलाद्रिगमन जगन्नाथ दर्शन सार्वभौम भट्टाचार्य प्रभुर मिलन एसब लीला प्रभुर दश वृंदावन विस्तारी करी अचेन उत्तम वर्णन। श्री चैतन्य महाप्रभु की जगन्नाथपुरी की यात्रा और जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु का दर्शन, जगन्नाथ जी का दर्शन, तत्पश्चात सार्वभौम भट्टाचार्य से महाप्रभु का मिलन, ये इस प्रकार ये सब लीलाएं जो हैं इनको बहुत विस्तार रूप से विस्तृत तरीके से वृंदावन दास ठाकुर ने अपने चैतन्य भागवत नाम के ग्रंथ में व्याख्यान उसका किया है। तो यहाँ पे जैसे बता रहे हैं कि ये हालांकि घटना यही हम भी चर्चा करेंगे, पर इस घटना की जो है विस्तृत चर्चा जो है वो चैतन्य भागवत में पहले ही वृंदावन दास ठाकुर कर चुके हैं। तो ये सब जो लीलाएं हैं जैसे जो ये ग्रंथ हैं चैतन्य चैतामृत, चैतन्य भागवत, एटलीस्ट ये दो ग्रंथ, चैतन्य मंगल थोड़ा सा डिफरेंस है एक एक लिहाज से, वैसे कोई डिफरेंस नहीं है पर बाहरी दृष्टि से कि ये ग्रंथ जो है दोनों ग्रंथ चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, तो सेकंड जनरेशन भक्तों के द्वारा लिखे गए। वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के शिष्य हैं और ये जो है तो ये परवर्ती काल के आचार्यों ने जो है ये लीलाएं लिखी हैं। तो फिर भी जब ये लीलाएं लिखी हैं उन्होंने, तो ये लीलाएं जो लिखी हैं उन्होंने वो पूर्ववर्ती आचार्यों के जिन्होंने साक्षात महाप्रभु के लीलाओं को जो है देखा है तो उनके आधार पर लिखा। जैसे हम सब जानते हैं चैतन्य चैतामृत, चैतन्य चरित नामक कर्चा है मुरारी गुप्त का, और इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के नोट से लिखे हुए हैं। तो उसी तरीके से चैतन्य भागवत भी जो है वो भी उन्होंने जो महाजन पूर्व जो इनको महाजन कहते हैं, महाजन का मतलब 12 महाजन जो हम जानते हैं वैदिक शास्त्र के अनुसार, और जो भी भगवान के निजन है, भगवान के परिकर पार्षद हैं तो महाजन, वो महाजन है। तो ये तो उनके द्वारा लिखे गए जो पद हैं जिनको हम वैष्णव गीत कहते हैं उनके आधार पे जो है चैतन्य भागवत इत्यादि जो है इनका संकलन हुआ है। तो इनको महाजन पदावली कहते हैं, हो सकता है आप लोगों ने सुना भी हो। तो उनके आधार पे जो है ये सब ग्रंथों की रचना, क्योंकि वो डायरेक्टली उन्होंने उसको विटनेस किया है और उन्होंने तो पर महाजन पदावली जो है जो ये सॉन्ग्स है, जैसे हम कई बार कई गाते हैं, जैसे शाम को हम गाते हैं डेली भक्ति विनोद ठाकुर का कीवा जया जया गोरा चंद्र, तो वो क्या है, वो एक लीला है, पूरी चैतन्य चैतामृत नहीं है वो। तो उसी तरीके से महाप्रभु का कोई हम भजन गा रहे हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मरे, तो वो एक पर्टिकुलर कुछ पास टाइम है, वो पूरी लीला नहीं है महाप्रभु की। तो इस प्रकार से जो महाजनों के जो पदावली वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि जो महाजन जिस वक्त वहां पे महाप्रभु के साथ था उन्होंने जो देखा जो सुना उन्होंने लिख डाला, क्योंकि अगर वो नहीं लिखेंगे तो फिर कोई बताने वाला नहीं होगा। तो जो परवर्ती आचार्य हैं इन्होंने उसको क्रोनोलॉजिकल क्रमबद्ध तरीके से, इसलिए चैतन्य चैतामृत जब हम पढ़ते हैं ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा होगा, क्रमबद्ध तरीके से लिखा होगा, ये डिफरेंस है। अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे भागवतम का क्रोनोलॉजी क्या है, भागवतम में क्रोनोलॉजी नहीं है, गलत। भागवतम जो क्रोनोलॉजी आध्यात्मिक है, भागवत का क्रोनोलॉजी जो है एक व्यक्ति का चरित्र नहीं व्याख्यान किया जा रहा है, व्यक्ति को वो जो है आध्यात्मिक विकास के हिसाब से जो उसकी क्रोनोलॉजी बनाई गई है। अभी आप जो है भगवान के चरणों में रहो, सीधा भगवान से लिपटने की जरूरत नहीं है, वो दशम स्कंद 11 सीधा भगवान के माथे पर चढ़ने के लिए 12 स्कंद, तो वो उस तरीके से। तो हमारे आध्यात्मिक रियलाइजेशन के हिसाब से जो है स्कंदों का विभाजन किया गया, दैट इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ भागवतम, एंड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ चैतन्य चैतामृत इज लाइक द ऑर्डर ऑफ महाप्रभु, बिकॉज भाग भागवत। तो भक्त जब शुरू करेगा, भगवान जब भक्त के रूप में आए हैं तो शुरुआत से शुरू करेंगे। तो शुरुआत कैसे होती है, हम में से ज्यादातर लोगों की शुरुआत कैसे होती है, माँ के पेट से हरे कृष्णा बोलते हुए निकलते हैं, नहीं वहां वहां करते निकलते हैं, उसके बाद सब, उसके बाद जब बड़े होते हैं सब प्रकार के छिछोरी हरकतें सब कुछ करते हैं। तो महाप्रभु का भी लाइफ उस तरीके से, जब महाप्रभु निकल रहे हैं निकलते जो है उन्होंने लीलाएं प्रकट, हालांकि वो सब लीलाएं हैं पर वो लीलाएं इस प्रकार की नहीं है कि वो बिल्कुल लोगों को पता लग जाए, आम आदमी को पता लगे लग जाए। तो धीरे धीरे बिल्कुल एक आम आदमी जिस तरीके से जो है भक्ति में आता है उस तरीके से महाप्रभु ने दिखा मैं अभी वैसी भक्ति में आया जैसे वो भगवान है। तो ये सिक्वेंस, इसलिए जो है महाप्रभु की लीला का सिक्वेंस इस तरीके से, इसलिए चैतन्य चैतामृत सिक्वेंस भी इस तरीके से। तो हालांकि जब महाजन ने जो वैष्णव गीत लिखे हैं वो सीक्वेंस में नहीं लिखे इस तरीके से, ऐसा नहीं है कि पहला गीत तब लिखा गया जिस दिन महाप्रभु पैदा हुए, उसके बाद वो इंतजार कर रहा था महाप्रभु का 5 साल के होंगे तो दूसरा गीत लिखूंगा, ऐसा नहीं है। सो बट ऑल दोस थिंग्स वेयर, अगर उस तरीके से हमको मिल जाता तो मैं सिर पैर पता नहीं लगते कि पहला पे क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, क्या है। सो इसीलिए चैतन्य चैतामृत का ये रिलेवेंस है और चैतन्य भागवत इन ग्रंथों का ये रिलेवेंस है। इसलिए यद्यपि हमारे संप्रदाय में जो है बहुत गौड़िया गीत है पर प्रभुपाद ने ऐसे नहीं बोला कि सर गीत गालो तुम्हारा काम चल जाएगा, पिक्चर के गीत गाने के वैसी आदत है ये भी गालो, ऐसा नहीं है। पहले इस चीज को हम इस सीक्वेंस से समझना पड़ेगा तभी, इसलिए हमारे लेवल पे जैसे जिस सीक्वेंस में हम जिस लेवल पे हैं तो हमारे लिए उस लेवल के गीत हैं। तो गौड़ी महाजनों के जिस प्रकार के, हमारा जो लेवल है इसलिए उस प्रकार के गीत हम गाते हैं। तो इस तरीके से सारा अरेंजमेंट जो है ये सीक्वेंशियल अरेंजमेंट है पूरा। खैर तो आगे आगे चलते हैं। सहज विचित्र मधुर चैतन्य विहार वृंदावन दास मुखे अमृतेर धार अतएव तहा बर्णिले हय पुनरोक्ति दम्भ करि बर्णि यदि तैसे नाहि शक्ति। यानी कि तो महाप्रभु के जो लीलाएं हैं उनका स्वभाव ही इस प्रकार से है, स्वभावत ही वो बहुत ही विचित्र है और बहुत ही मधुर है। और जब इन लीलाओं का वर्णन वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा हो रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मधु की वर्षा हो रही हो, अमृत की वर्षा हो रही हो। इसीलिए मैं विनीत भाव से ये निवेदन करता हूं कि क्योंकि इन लीलाओं का वर्णन पूर्व में वृंदावन दास ठाकुर जी के द्वारा पहले हो चुका है तो ये मेरे दम्भ का ही प्रदर्शन होगा अगर मैं इन लीलाओं को दोबारा से जो है उसका वृत्तांत सुनाऊं, तो शायद ये ठीक नहीं होगा और साथ ही साथ मेरे अंदर ऐसी शक्ति है भी नहीं। तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं महाप्रभु के। हाँ, हालांकि यहां पे तो महाप्रभु की जो भी लीलाएं होंगी आगे, तो क्या लीलाएं हैं अभी बेसिकली, तो महाप्रभु की जो अब लीलाएं हैं वो फुल फ्लेज्ड प्रीचिंग की लीलाएं होंगी। अब हालांकि नवदीप में भी महाप्रभु फुल फ्लेज्ड प्रीचिंग करते शुरू किया था उन्होंने, और अब जो है बिल्कुल असली परिव्राजकाचार्य का रोल जो है अब जो अब वो निभाएंगे चैतन्य महाप्रभु। तो हम देख सकते हैं। तो कई बार एक विचारधारा भी कई बार लोग पूछते हैं, एक आध्यात्मिक विकास का एक क्रम होता है और जब क्रमिक विकास होता है तो एक आध्यात्मिक विकास के एक धरातल पे एक प्रकार के प्रश्न उठते हैं, फिर जब वो उससे उठ जाता है दूसरे धरातल पे आता है तो दूसरे धरातल के प्रश्न उठते हैं। तो आध्यात्मिक धरातल के एक पटल पे कई बार भक्तों के मन में ऐसा प्रश्न आता है कि ये प्रचार कब करना चाहिए, पहले सिद्ध हो जाएं फिर प्रचार करें कि प्रचार करें और फिर सिद्ध हो जाएं, प्रचार करते करते सिद्ध हो जाए, तो क्या ठीक है। तो कई बार इस बारे में जो है कई प्रकार के मतांतर सुनने को मिलते हैं, सिद्ध भक्तों के मतांतर नहीं मिलते, जो शुद्धिकरण के उसमें है मार्ग में है उन्हीं का मतांतर होता है। तो यहां देख सकते हैं, तब कई बार ऐसा एग्जाम्पल भी कोट होता है कि हम श्रील प्रभुपाद को देखें या हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को देखें, इन्होंने पहले वृंदावन में भजन किया, मायापुर में भजन किया, फिर ये सिद्ध हुए, फिर उन्होंने प्रचार शुरू किया। तो अगर हम श्रील प्रभुपाद के अनुयायी हैं तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, ठीक बात है, लॉजिकल हाँ कि नहीं, लॉजिकल है कि नहीं। हाँ मुस्कुरा के हो रहे हैं। हाँ बोलिए ना, ठीक है, हाँ ठीक है, पॉइंट वेल टेकन। अब हम ये देखते हैं प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये किन के अनुयायी हैं, ये महाप्रभु के अनुयायी हैं, ठीक है ना, भक्ति विनोद ठाकुर के अनुयायी हैं, नित्यानंद प्रभु के अनुयायी हैं। अच्छा अब इनको देखते हैं क्या कर रहे हैं, ये नवदीप से लेके गंभीरा की लीला के पहले तक महाप्रभु ने प्रचार ही किया और फिर सिद्ध भक्तों वाले काम किए। नित्यानंद प्रभु ने जो है, नित्यानंद प्रभु का नाम ही अवधूत है, वो 7 साल की उम्र से प्रचार ही कर रहे हैं, जब से घर से निकले तो उसे प्रचार ही कर रहे हैं। प्रचार करते 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 जगन्नाथपुरी पहुंच गए तो चलो भजन करूंगा, महाप्रभु ने बोला चल भैया दोबारा नवदीप जाओ, जाओ प्रचार करो, प्रचार करो, शादी हो गई तब भी प्रचार कर रहे हैं, ऐसे नहीं ग्रस्त हो गए अब शेल्फ सेटल हो गए, बहुत प्रचार कर लिया बस ठीक। कई बार ग्रस्त में मानसिकता होती है हमारे भक्तों में ऐसा आता है कि अब हम ग्रस्ती है ना हम थोड़ी प्रचार करेंगे, अब तो अब प्रचार कर सब कर लिया, बच्चा हो गया बड़ा हो गया अब, अच्छा ठीक है बच्चा बड़ा हो गया ठीक है अब चलते डेनी वेंट टू एक चक्र। बाकी विनोद ठाकुर प्रचार कर, जब कुछ नहीं आता था तब भी प्रचार करते थे अपरेंटली उसने लीला में, तब कुछ ना कुछ गीत लिखते थे, एसेज लिखते थे, आर्टिकल्स लिखते थे, मठों के बारे में लिखते थे, ये फिर जब तथाकथित रूप से भक्ति में आ गए तभी प्रचार कर रहे थे, फिर सिद्ध हो गए तभी प्रचार कर रहे थे, और लास्ट में फाइनल कुछ महीने चलो भाई मुझे भजन करने दो थोड़ा सा, मैं ये भी करना चाहता हूं, या ना? तो अब किसको फॉलो करें फिर? ले लीजिए साइड जहां सब साइड लेना। इसका कंक्लूजन ये है कि ये इतना मायोपिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसके कि ये ऐसे ही होता है या ये ऐसे ही होता है, ये वैसे होता है जैसे गुरु बताते हैं। यहां हार्मनी आती है इस चीज की, पहले प्रचार करें कि पहले सिद्धि लाएं, ये क्या ये हमारे लिए क्या है ये हमारे गुरु बताएंगे, आप भाई प्रचार मत करो बैठो भजन करो, भाई आप भाई भजन करो प्रचार करो भजन करने का प्रयास मत करो, तो ये सुपीरियर अथॉरिटी डिसाइड करके बताती है, दैट इज द लीला वी कैन सी, तो दैट इज व्हाट वी विल गेट, मध्य लीला इज फुल ऑफ प्रीचिंग। अभी महाप्रभु निकलेंगे, अभी जाएंगे, रास्ते में प्रचार करेंगे, रास्ते में भी इतना इतने इंसिडेंसेस नहीं मिलते और कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो प्रीचिंग, बिकॉज द सेम एप्लीकेशन कैन बी अप्लाइड फॉर एनी, भक्ति के किसी भी अंग में सेम चीज अप्लाई हो सकती है। मान लीजिए हम कीर्तन कर रहे हैं तो हरिनाम किसके मुख से सुनना चाहिए? जो शुद्ध हो, तो पहले आप शुद्ध हो क्या, फिर कीर्तन करने बैठना, ठीक है ना? जब आप कीर्तन करेंगे तो हम कीर्तन किससे करें, फिर ताकि हम शुद्ध हो, तो इट इज यू नो कॉम्प्लीमेंट्री। ये भक्ति जो है वो सर्कुलर है, वो लीनियर नहीं है, कर्मकांड जो है लीनियर, ये कर्मकांडी विचारधारा है, पहले ये करेंगे तो ये होगा, भक्ति लीनियर सर्कुलर है, नवदा भक्ति है। तो हम किसी भी भक्ति का अंग जो है छू जाते हैं तो उस समय भक्ति हमारी शुरू हो जाती है, हालांकि उसमें फिर शुरुआत श्रवण से ही होती है। तो इस तरीके से इट इज नॉट लाइक दिस, पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, स्टेप्स आर देयर इन कृष्ण कॉन्शियसनेस बट दे आर ट्रांसेंडेंटल, देयर अंडरस्टैंडिंग इज ट्रांसेंडेंटल। तो वट एवर स्टेप्स आर गिवन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस दे आर ट्रांसेंडेंटल, उसकी अंडरस्टैंडिंग मेटीरियल लीनियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो यहां पर इसलिए हम देख रहे हैं महाप्रभु जो है अब कीर्तन करते हुए जा रहे हैं और जाते जाते अभी रास्ते में ऑब्वियसली पहले अभी आगे वाले श्लोक में आप देखेंगे कि किस तरीके से जो महाप्रभु टोल दे रहे हैं, मतलब महाप्रभु टोल नहीं दे रहे, टोल मतलब उन दिनों भी टोल ब्रिज हुआ करता था, मतलब ना अभी जो है हाईवे पे टोल ब्रिज बनता है, उन दिनों नदियों के उस पार इस पर टोल ब्रिज होता था। जैसे अगर किसी ने नदी वगैरह पार, जैसे महाप्रभु वगैरह में जाते हैं तो हम नदी पार करते हैं तो क्या होता है, जैसे नदी पार करते हैं टोल लगा होता है 50 पैसे ना दो, तो इस तरीके से तो ऐसे टोल, तो ऐसे करते करते महाप्रभु जो है जाएंगे, फिर महाप्रभु रेमुना जाएंगे, फिर भुवनेश्वर होते हुए फिर पूरी पहुंचेंगे, 21 दिन तक की महाप्रभु की ट्रैवलिंग होगी अभी इसमें। तो जब वहां महाप्रभु जब पहुंचेंगे, अब ये पूरी यात्रा इसका इसका उद्देश्य क्या है महाप्रभु का, महाप्रभु जगन्नाथपुरी जा रहे हैं बस, महाप्रभु इज ऑन आउट फॉर इट प्रीचिंग टूर है, पहले लोकल प्रीचिंग की सेम जैसे कि अभी इस्कॉन में होता है, पहले डिवोटीज जो है वो एक क्षेत्र में जो उनको भेज दिया जाता है, यहां प्रचार कीजिए, यहां प्रचार कीजिए, कल्टीवेट कीजिए डिवोटीज को, फिर जब कल्टीवेट हो जाते हैं डिवोटीज ग्रो करने लगते हैं तब बोलते हैं चलिए अब आप प्रीचिंग बढ़ाइए, अब आप टूरिंग कीजिए, सेम। तो जैसे कॉमनली इस्कॉन में ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेशनल प्रीचर, तो ये सेम चीज है। तो अभी महाप्रभु ने पहले नवदीप में प्रचार किया, फिर आप जो है महाप्रभु इंटरनेशनल प्रीचिंग के लिए निकले, महाप्रभु आप वहां निकले, तो इंटरनेशनल ही था उन दिनों, इंडिया में प्रीचिंग इंटरनेशनल था क्योंकि इंडिया इतना बड़ा एक नहीं था, छोटे 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 राज्य थे, तो एक राज्य से दूसरे राज्य को देखा इंटरनेशनली बोलेंगे नहीं क्या बोलेंगे। तो महाप्रभु ऐसा नहीं, महाप्रभु इज नॉट इंटरनेशनल प्रीचर, महाप्रभु ने एवरेज प्रीचर से ज्यादा इंटरनेशनल प्रीचिंग की है। तो कितने राज्य में जाएंगे देखिए, कोई मुसलमान का राज्य है, कोई हिंदू का राज्य है, कोई कहां पर राज्य, कहीं पर बौद्धों का राज्य, कभी कहीं का राज्य, हर जगह जा रहे हैं महाप्रभु, इज गोइंग एवरीवेयर, यू नो सो ही इज गोइंग। तो अब जब अब जब महाप्रभु इन सब जगह पे जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो महाप्रभु की स्ट्रैटेजी क्या है प्रीचिंग की? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। महाप्रभु ने जब बड़े बड़े दार्शनिकों से, बड़े बड़े न्यायिकों से, मायावादियों से, इन लोगों से जब महाप्रभु ने, अभी देखेंगे साउथ इंडिया के टूर में जब मिल रहे हैं, और साउथ इंडिया टूर और फिर वापस ऑल इंडिया टूर जब महाप्रभु करेंगे, तो महाप्रभु जो है ईंट का जवाब पत्थर से प्रीचिंग नहीं कर रहे कि देखता हूं आपको कितने श्लोक आते हैं, आ जाओ। स्ट्रैटेजी ऑफ प्रीचिंग ऑफ महाप्रभु इज यूज ऑफ कॉमन सेंस, क्योंकि ये हम देख पाएंगे कि दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ प्रीचिंग, कॉमन सेंस इस्तेमाल करें महाप्रभु प्रीच करने में। मायापुर में नवदीप में थे, वो केशव कश्मीरी आया, अब वो महाप्रभु भी दिखाते, चल तूने सौ सुनाया, चल मैं 200 सुनाता हूं तो क्या होता उससे? वो प्रीच हो जाता, मतलब प्रीच नहीं होता उससे, उसका ये हो जाता कि और खुंदक भर जाती उसके अंदर कि अच्छा मेरे को बीट कर दिया। महाप्रभु ने वो नहीं किया, महाप्रभु जस्ट यूज कॉमन सेंस, टक से श्लोक पढ़ लिया और बोला अच्छा आप श्लोक तो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा बताया सब कुछ, ये आपने बताया भवानी भरता, तो भवानी का मतलब ये होता है जो भव के, भाई भवानी मतलब भव की पत्नी भवानी, और भरता का मतलब ये होता है कि जो उसका और कोई भरण पोषण करने वाला हो, तो ये इसका और भी पति है क्या पार्वती जी का? कॉमन सेंस, इट्स कॉमन सेंस। ही डिडंट कैच ए वो कि नहीं यहां पर अपना शास्त्रिक मतलब एक में कुछ पकड़ लिया, सब कॉमन सेंस। एनी फूल कैन अंडरस्टैंड, भवानी शब्द का अर्थ है जो भव का पत्नी है, शिव जी की पत्नी, तो उसकी पत्नी का पति क्योंकि क्या है? कॉमन सेंस, यूज कॉमन सेंस। सार्वभौम भट्टाचार्य को प्रीच करते हैं महाप्रभु जब जाते हैं, यूज व्हाट? पेशेंस। 7 दिन तक चुपचाप सुनते रहे, बोलो भैया कितना बोलने, बोलो और बोलो, बोल के थक गया जब वो 7 दिन तक, चलो अच्छा ठीक है, हम आपको कुछ समझ आ रहा है? हाँ आ रहा है। और फिर क्या समझ आ रहा है? तो भाई जो बोल रहे हो समझ आ रहा है, पर जब जो समझा रहे हो नहीं समझ आ रहा है, क्या मतलब है? जब बोल रहे हो तो आप पढ़ रहे हो शास्त्र, पढ़ रहे हो तो समझ आ रहे हैं, जब समझा रहे हो समझ नहीं आ रहा। सो दैट्स लाइक यू नो विथ ह्यूमिलिटी एंड विथ कॉमन सेंस, एडेंट सेड व्हाट यू से इज रॉन्ग, शास्त्र में ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये श्लोक, ये श्लोक, ये श्लोक। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रचारकों को श्लोक नहीं आने चाहिए, उद्धृत नहीं करने चाहिए, पर जब कन्फ्रंटेशन होता है, कन्फ्रंटेशन के केस में वन ऑफ द इजिएस्ट वे इज टू यूज कॉमन सेंस। यहां महाप्रभु के टीचिंग में अभी ये चीजें देखते हैं। महाप्रभु गए साउथ इंडिया में, रंगनाथ मंदिर गए, वेंकट भट्ट से मिले, वो वहां के महामंडलेश्वर है, वहां के उस पूरा वो एरिया आके उनके पैरों पे सर रखता है अपने, पुजारी है वहां के, हेड पुजारी है वहां के, तो उनको जाके नहीं समझाया कि तुम्हारा नीचा है, तुम अभी वैदी भक्ति कर रहे हो तुम लोग, चलो ना सुनने को मिलता है वैदी भक्ति कर, महाप्रभु ने नहीं बोला जाके, ये अगेन यूज कॉमन सेंस, बोला कि आप भक्ति कर रहे हैं, हाँ लक्ष्मी नारायण, हाँ जी बड़ा अच्छा है, ठीक है, ये जो आपकी लक्ष्मी जी है, ये एक लीला आती है आपको सुना ही होगा कि जिसमें वो भगवान श्री कृष्ण की तपस्या करती है वहां पे मधुबन में, तो ये क्या है फिर? कॉमन सेंस। तो शिव जी को उपासक मिला कोई इस तरीके से कुछ भी, तो मतलब ठीक है, ज्यादा कुछ बोला ही नहीं, बस ऐसे ही, नहीं तो बहुत ही अच्छा है, ये नहीं बोलेगा शास्त्रों में ऐसा बताया हुआ है, ये बताया हुआ है तुम सारे देवी देवता को उपासक करते हो नरक जाओगे, सारे भौतिकवादी हो, काम ही हो, ये लोग ऐसा करते हैं शास्त्र में ऐसा, नहीं सिंपल लेने का, अच्छा ऐसा है ये शिव जी का एक नाम गंगाधर है, हाँ जी सर पे गंगा रखते हैं, हाँ जी गंगा कहां से आती है? विष्णु के चरणों से आती है, बोलने की जरूरत ही नहीं, बात ही खत्म हो गई, जिसके चरणों के पानी को अगर कोई अपने सर पे रखे तो कौन छोटा कौन बड़ा अपने आप ही क्लियर हो गया। यूज कॉमन सेंस, दैट इज द लीस्ट ऑफेंसिव वे ऑफ प्रीचिंग। बट इन कॉमन सेंस में भी शास्त्र है, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर शास्त्रिक कोटेशंस अल्टीमेटली, बट दे आर यूज इन सच ए वे, यू कैन सी द प्रीचिंग ऑफ महाप्रभु इज गोइंग ऑन। प्रकाशन सरस्वती मिले, क्या किया उसके साथ? आजा मायावादी, मायावादी कृष्ण अपराधी, आजा बैठे रहे वहां पे, अपने आप उठाया उनको, आओ भाई आप, और चमत्कार दिखाया। क्योंकि मायावादी इस प्रकार जो आम आदमी है जो चमत्कार, मतलब प्रभुपाद की जगह में बता भी रहे, मैजिक इज लाइक फॉर फुलिश पीपल। तो जो चमत्कार को नमस्कार करने वाले जो है वो पहले दर्जे के मूर्ख, जो अव्वल दर्जे के मूर्ख होते हैं उनके लिए चमत्कार होते हैं। तो जब कोई ऐसा बोलता है कोई चमत्कार करके दिखाओ, इसका मतलब है वो बोल रहा है कि मैं पहले दर्जे का मूर्ख हूं। ठीक है, ठीक है। तो पहले दर्जे के मूर्खों के लिए उन्होंने थोड़ा चमत्कार भी करके दिखाया, चल भैया तू भी क्या याद करेगा, तू भी खुश हो जा। ठीक है, तो ये ही डिडंट, भगवान है स्वयं, जिनकी लाइक श्वास से वेद निकलते, पर ही डिडंट यूज्ड दैट, ही यूज्ड लाइक दिस सिंपल ट्रांस, बिकॉज दैट इज द प्रीचिंग ऑफ कली योगा। तो जितना सिंपल वे में, दैट्स इन द सेम लाइन वी सी प्रभुपाद, सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड दैट फिलोसफी, एज ईजी एज पॉसिबल फॉर ले मैन टू अंडरस्टैंड, दैट इज हाउ प्रभुपाद फॉलो द सेम थिंग। कि शास्त्र ने बताया हुआ है तर्क अप्रतिष्ठा नाथ, ड्राई आर्गूमेंट से जो है, शुष्क दर्श से जो है, आप कोई चीज किस प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। तो आपको आपके आर्गुमेंट्स में जो है वो बात होनी चाहिए, शुड बी एबल टू टच द हार्ट ऑफ द पीपल, आर्गुमेंट शुड बी एबल टू, आवर लॉजिक एंड रीजनिंग दे शुड बी एबल टू टच द हार्ट ऑफ द पीपल, नॉट जस्ट टू डिफीट द इंटेलेक्ट ऑफ द पीपल, दैट्स ऑल। हाँ, हरा दिया, हरा तो दिया, गया उसके बाद। सो और क्योंकि महाप्रभु का जो अवतार है, महावदान है अवतार, तो वो यही खासियत है एक्चुअली। महाप्रभु ने, अगर ये डिफरेंस है, महाप्रभु ने जिस तरीके से कृपा बांटी है उस प्रकार से किसी अवतार भगवान से कृष्ण, हालांकि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड महाप्रभु, भक्तिसार सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि कृष्ण भी उस तरीके से कृपा नहीं बांटी है। क्यों नहीं बांटी है, ठीक है कंसेप्चुअली पता है नहीं बांटी है, पर वॉट इज इट जो उन्होंने नहीं बांटी है, भगवान से कृष्ण हो चाहे कोई दूसरे अवतार हो भगवान के, उन्होंने कृपा उसी को की है जो भगवान के शरणागत है, और जिसने शरणागति नहीं लिया उसका खत्म, वैसे कृपा की है। शिशुपाल आ जाए, जानते जितने भी असुर मारे, हिरण्यकश्यप आ जाए, हिरण्याक्ष है ना, आप सोचो बोले भगवान उन पर कृपा करो, अब नरसिंहदेव ने कैसे कृपा करी, चीड़ फाड़ा भी नरसिंह देव से आके हम कृपा मांगे, मैं नरसिंह देव जी हमें कृपा करो, बड़ा देव जी हम पे कृपा करो, आज जरा कान बढ़ाई आगे तो ने कृपा करी ऐसा पे, दैट इज द वे। बट वट हाउ महाप्रभु हैज डन मर्सी ऑन देम, महाप्रभु डिडंट डिमांडेड सरेंडर, वेदर दे आर सरेंडर्ड और नॉट सरेंडर्ड, महाप्रभु ने कृपा दी। ये डिफरेंस, दैट्स लाइक सब अवतार सार शिरोमणि महावदान अवतार, दैट इज द डिफरेंस भक्तिदास सरस्वती ठाकुर से। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है, जिसने भगवान को सरेंडर नहीं किया वो खत्म, दैट इज द कृपा। बट हैड इज चैतन्य महाप्रभु, रावण ने सरेंडर नहीं किया रामचंद्र को, तो क्या किया फिर, मारा ना उसको, तो तुम बड़े खुश होकर मनाते वो रावण जलाते। बट महाप्रभु ही डिडंट किल एनीबॉडी लाइक दैट, ही किल्ड देयर इग्नोरेंस। तो आगे चलते हैं, आगे फिर तो इसलिए यही कुछ रीजंस है, मतलब चैतन्य चैतन्य तो मैंने डिस्कस करते हैं वीक में हम लोग, तो क्योंकि फ्रॉम वन एंगल गौरलीला सुनने से, गौरलीला चर्चा करने से जो है हमारे अंदर क्वालिफिकेशन और आती है कृष्ण लीला समझने की एक्चुअली। तो भक्तिदास सरस्वती ठाकुर जो बिल्कुल नवागंतुक जो भक्त होते थे, जो नए होते थे, उनको चैतन्य भागवत रिकमेंड करते थे। आफ्टर दैट ही विल से नाउ रीड चैतन्य श्रीमद भागवत, then read Chaitanya Chaitamrita. So that was one angle, because Chaitanya Chaitamrita jo hai ye mainly siddhanton se paripurn granth hai. Leelaye bhi hain, but still Bhaktivinoda Thakur batate hain of these two ye is tarike se is granth ki rachna ki gayi hai. क्योंकि लीला है, जैसे ऑलरेडी जैसे इसमें हर चैप्टर आप खोलेंगे तो सबसे पहले उठा के जो है कविराज गोस्वामी जो है वृंदावन दास ठाकुर का नाम लेते हैं. इसका मतलब क्या है, लीला है वो बता चुके हैं. जो अब मैं बता रहा हूं वो मेनली सिद्धांत है. तो अब ये आगे का श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण, जहां बता रहे हैं कि अतिता बुर्णिल हर पुनरोक्ति. अगर तो मैं जो लीलाएं पहले बता चुके हैं उनको दोबारा बताऊं तो वो पुनरुक्ति है, पुनरावृत्ति नहीं है, पुनरुक्ति है. धर्मकारी बोलने जो थी तो इच्छे नहीं सकती. तो और अगर मैं ये करता हूं तो इसका ये मेरे घमंड का प्रतीक होगा. तो मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जो ऑलरेडी वृंदावन ठाकुर ने या प्रीवियस आचार्य ने पूर्ववर्ती आचार्य ने जो बोल दिया है उसके ऊपर बात बोलू. तो आप बोल सकते हैं तो क्या हो गया, मान लीजिए कोई कोई लीला है तो लीला आपने लिखी है मैं भी लिख देता हूं, गलत थोड़ी है, गलत है. जैसे मान लीजिए आपने एक लीला सुनी, ठीक है, कहीं से आपने वो लीला जाके सामने सुना दी, सही है गलत है? नहीं ब्रो जी, हम लोग लीला वीला नहीं सुनाते ज्यादा. वन अगर स्पिरिचुअल मास्टर से ऑथराइज है, ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स खत्म. वो सिद्धांत वही है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मान लीजिए कि आपने एक लीला सुनी, ठीक है, सुनते हैं ना कई बार मंदिरों में आते, मंदिर में ही आते ना किशन जी की लीला सुनाइए, है ना, तो फिर कुछ सुनने को नहीं मिलती तो परेशान हो जाते हैं, क्या ज्ञान की बातें करते हैं और ये सब इस्कॉन में ना लेक्चर बेकार होते हैं. हम लोग इसलिए जाते हैं, हम वृंदावन जाते हैं और फलाने मंदिर में जाते हैं, वहां बाबा जी बड़ी अच्छी कथा करते हैं, ठीक है ना, तो फिर हम वो सुन के आते हैं, फिर हम वो लीला सुनाते हैं. ठीक है, गलत है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हाँ नहीं, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है. दो अच्छे प्रभु जी ने बताया कि गुरु के आगे से सुनाए और उन्होंने यथारूप सुनाए. ओके ठीक है, यथारूप सुना दिया आपने, एज इट इज सुना दिया, जो सुना एज इट इज, आप मतलब ना यू आर वेरी गुड कॉपी कैट, आपने जो सुना एज इट इज हमने रिपीट कर दिया, पैरट कर दिया, तो भी ठीक है. इट्स अ वेरी सटल डिफरेंस. इसी वजह से आप ये बात बोल रहे हैं, दैट सटल डिफरेंस इज आपने वो लीला सुना दी, आपने क्रेडिट नहीं दिया आप जहां से सुनने आए हैं उसको, तो इंप्रेशन क्या जाएगा, ये लीला आप सुना रहे हैं, आप सुन के नहीं सुना रहे, कहीं से पीछे से नहीं आया, ये परंपरा से नहीं आया, ये मेरा क्रेडिट है. ये सुनिए सुनिए वाली लीला सुनिए, पहले कभी सुनिए नहीं सुनी, देखा. तो ये दम का प्रतीक, इसलिए बोल रहे दम का प्रतीक है. इफ यू आर रिपीटिंग समथिंग यू मस्ट गिव क्रेडिट. इसलिए भागवतम जो हम पढ़ते हैं चैतन्य में, कोई भी यहां से कक्षा होती है, कोई भी वक्ता यहां से बोलता है तो ये बोलते हैं शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य किसका, मेरा नहीं. की बोलती बंद हो गई. तो ये आवाज आ रही है, हरे कृष्ण आ गए, ठीक. तो ये डिफरेंस है. आप कोई भी लीला सुना रहे हैं, कोई भी चीज है, कोर्ट द अथॉरिटी, वैष्णव कोर्ट्स अथॉरिटी, गौरगोविंद महाराज बोला करते थे, वैष्णव कोर्ट्स अथॉरिटी. आपने कहां से सुना है, आप कोई भी लीला सुनाइए ये बताइए कहां से सुनिए. तो ये सिस्टम, तो अगर ये लीला, अगर जो लीला ऑलरेडी वो बता चुके हैं पूर्ववर्ती आचार्य, वो लीला मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूं, अब मैं कोई क्रेडिट नहीं दे रहा हूं, ताकि मेरा नाम हो जाए, एक मेरी भी किताब निकल जाए. एक ये किताब है ना जब नाथ ठाकुर ने निकाली, एक मेरी भी निकल गई, क्या दिक्कत होती है ना. अब मान लीजिए भाई, मान लीजिए सुल्तान चंद ने एक किताब निकाली है अकाउंटेंसी की, तो भाई अब दूसरी टाटा मैग्रॉ ने दूसरी निकाल दी अकाउंटेंसी की, क्या दिक्कत. अलग अलग पब्लिशर है, अलग अलग किताब निकालेंगे, ये कर्मी अंडरस्टैंडिंग है, वो कर्मी अंडरस्टैंडिंग की किताब इसलिए निकलती है कि एक किताब के बेसिस पे एक ऑथर फेमस हो जाता है तो दूसरा ऑथर कहता मैं भी पीछे क्यों रहूं, मैं भी किताब छाप तो मैं भी फेमस हूं। सो दैट इज कर्मी अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिवोट इज डिफरेंट। जो चीज पहले कोई ऑथर बता चुका है तो वी रेफर टू दैट ऑथर, इस बारे में पढ़ना है वहां से पढ़िए। इसलिए चैतन्य चैतन्य मध्य लीला में आपको कई कोर्स मिलेंगे अभी बड़े बड़े पढ़ में प्रभुपाद के, इस बारे में पढ़ना है बृहद भागवतम पढ़िए, इस बारे में पढ़नी है ललित माधव देखिए, ये वाला देखिए लघु भागवतम देखिए, ये वाला देखिए यहां देखिए। इट इज नॉट दैट की दैट हैज टू बी अगेन री रिटन। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिपीटेशन एंड कंपिटिशन। रिपीटेशन का मतलब है यू आर गिविंग क्रेडिट टू द प्रीवियस आचार्य और यू आर कोटिंग हिम, और कंपटीशन का मतलब है यू विल डिनाई कि ये जो बस मैंने लिखी है, अभी जो मैंने लिखी है बस, इसके अलावा कोई किसी को पता नहीं है सब चीजें, मैं बता रहा हूं, आई एम द ओनली सोर्स, भगवान का रास्ता जो है मेरे से होके गुजरता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग होती है, दैट इज द डिफरेंस। अगर कोई किताब सेम सब्जेक्ट पे लिखी जाती है दूसरे ऑथर के द्वारा, वो एक क्राइटेरिया होता है, फर्स्ट जैसे प्रभु जी ने बताया कि गुरु की आज्ञा है, दूसरा पर्पस होता है, इफ द सेम सब्जेक्ट नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड इन द लैंग्वेज ऑफ आवर टाइम्स। ये जो चीजें जो प्रभुपाद के जो ग्रंथों में चीजें हैं ये सारे पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा लिखी हुई चीजें, तो प्रभुपाद ने क्यों नहीं बोल दिया, जैसे ये चैतन्य सिद्धांत जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो अभी क्लास हो रही है, ये तो नाम ही चैतन्य चैतन्य ग्रंथ यही है, ये ग्रंथ किसका है, ये प्रभुपाद का ग्रंथ थोड़ी है, ये कविराज गोस्वामी ग्रंथ है। हाँ समझ रहे बात, तो पर क्यों है ये, तो फिर प्रभुपाद को लिखने की क्या जरूरत है, व्हाट ही इज डूइंग, ही इज एक्सप्लेनिंग द बुक इन द लैंग्वेज ऑफ आवर टाइम्स। जिस टाइम भी किताब लिखी गई थी वो बांग्ला में लिखी गई थी, और वो भी अभी की चलित बांग्ला नहीं है, एवरेज बंगाली कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस बुक। भागवत गीता है तो प्रभुपाद को लिखने की क्या, भागवत गीता तो भगवान ने बोली, explaining that in the language of our time, so we can understand it. सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में जो है सेम ग्रंथ को जो है दोबारा लिखा जाता है ताकि आम आदमी समझ सके। नॉट दैट एक ग्रंथ ऑलरेडी चल रहा है, एक भगवदगीता एडिशन प्रभुपाद ने निकाली है, एक पैरल भगवदगीता एडिशन मैं भी लिखूंगा, मेरे को भी लोग कैसे जानेंगे नहीं, तो अनलेस एंड अनटिल दैट नीड इज देयर। या आपके स्पिरिचुअल मास्टर ने बोला कि आप लिखिए इसी सब्जेक्ट पर, दोबारा लिखिए, कोई बात लिखिए इसको जरूरत। यहां पे आगे इस अगले श्लोक में और खुलासा होगा। चैतन्य मंगले जहा कौली लो बनन सूत्र रूपे से लीला कौरी है सुचान। तो मैं इसीलिए केवल सूत्र रूप में चैतन्य भागवत में जो लीलाएं बताई गई हैं वो उनका वर्णन कर रहा हूं जो कि वृंदावन दास ठाकुर ने लिखी है विस्तार रूप से। तार सूत्रे आचते हो ना कोई लो वर्णन जाथा किंचित कौरी से लीला जाथा किंचित कौरी से लीला कथन। तो कुछ ऐसी लीलाएं हैं जिनका उन्होंने विस्तार रूप से वर्णन नहीं किया अपितु केवल सूत्र रूप में उसका उल्लेख किया है। तो इन लीलाओं का मैं विस्तार रूप से इस ग्रंथ में वर्णन करूंगा। दैट मीन्स एक्सप्लेनिंग द अनएक्सप्लेन्ड। जो चीज उन्होंने विस्तार रूप से वर्णन नहीं किया है वो मैं करूंगा। इसका मतलब क्या है, दैट इज द सर्विस गिवन बाय द प्रीवियस आचार्य, कि जो मैं छोड़ के जा रहा हूं वो आप एक्सप्लेन करो। इसी तरीके से जैसे लाइक कविराज गोस्वामी ने और भी ऐसे ग्रंथ लिखे, ऐसे और भी ग्रंथ लिखे। प्लीज डोंट स्पीक इन द बैकयार्ड, पीछे बातें ना करें, कृपा करें, मेरा ध्यान बट रहा है, बाहर चले जाएं बात करने के लिए। तो ये जैसे कि कविराज जैसे यही वाले ग्रंथ है जैसे आप बता रहे हैं, इसी तरीके से कविराज गोस्वामी ने दूसरा ग्रंथ लिखा है गोविंद लीलामृत, तो वो रूप गोस्वामी जी का अष्टकम है, स्मरण मंगल अष्टकम। तो तो अष्टकाली लीला पे एक अष्टकम है, एक आठ श्लोक है बस, तो उसके लिए जो है उन्होंने 26 चैप्टर पूरा गौर लीलामृत तो वो एक्सप्लेन की. तो व्हाट इज गिवन इन अ कंडेंस फॉर्म कैन बी एक्सप्लेन्ड एंड विद द सेम अंडरस्टैंडिंग प्रभुपाद हैज रिटन पर्पट्स. पर्पट का मतलब यह खुलासा, व्याख्या, भावार्थ. तो जो शॉर्ट फॉर्म में भगवान कृष्ण ने बोला है या शॉर्ट फॉर्म में चैतन्य चैतन्य भागवतम बोला है पूर्ववर्ती आचार्यों ने, वो विस्तार रूप से सेम स्पिरिट कि जो वृंदावन दास ठाकुर ने तो सूत्रों में जो छोड़ दिया, तो वो मैं विस्तार रूप से, मतलब जो विस्तार किया उसके विस्तार करने की जरूरत नहीं. तो दैट इज द सेवा यूजुअली दे टेक. तो इसी इसमें हम देख सकते हैं इस्कॉन में भी, कंटेम्प्रेरी इस्कॉन में भी. तो शिल प्रभुपाद के बाद शिल प्रभुपाद के शिष्यगण जो है उनके जो ग्रंथ हैं वो इसी भाव में लिखे जाते हैं कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रभुपाद ने जो है बहुत ब्रीफली टच किया, चलिए जो उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन, या प्रभुपाद का स्टांस या हमारा कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर, तो ये प्रीचिंग का रोल होता है, ये प्रीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. जो संप्रदाय में आ रहे हैं तो अपने पूर्ववर्ती आचार्य को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका ये रोल होता है. हमें तो मना किया हुआ है प्रभु जी, फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं तो हमने टीवी नहीं देखना, ये नहीं देखना, रेडियो नहीं सुनना, कर्मी गाने नहीं सुने. प्रभु जी इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं ना, वो तो चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल में नहीं आता. दिखाओ प्रभुपाद ने कहां बताया, दिखाओ दिखाओ प्रभुपाद ने फेसबुक कहां मना किया, दिखाओ. तो प्रभुपाद ने मना नहीं किया तो आप कर सकते हो. That is the role of the present acharyas, explaining the unexplained. तो ये अंडरस्टैंड. अच्छा प्रभुपाद ने अपने टाइम पे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया है, ये इस्तेमाल किया, ये इस्तेमाल किया. तो जी आईपैड का इस्तेमाल तो नहीं किया, तो आईपैड का इस्तेमाल अपने लिए कर सकता हूं. ये भगवान की सेवा में कैसे लगेगा, प्रभुपाद ने दिखाया थोड़ी है. एक्सप्लेनिंग द अनएक्सप्लेन्ड, प्रभुपाद का रिप्रेजेंटेटिव है ये आपको बताएंगे, ये ऐसे करो. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. दैट इज हाउ वी कैरी ऑन द परंपरा, द मूड ऑफ प्रभुपाद, द मूड ऑफ द परंपरा, द टीचिंग्स ऑफ द परंपरा आर कैरीड ऑन इन दिस वे बाय रेफरिंग टू द प्रीवियस आचार्यस, देयर मूड, देयर अंडरस्टैंडिंग. तो ये आगे अभी देखते हैं. अभी नवा श्लोक, नवा सूत्र तैयार. अतएव तार पाए कोरी नमस्कार, तार पाए अपराध न हो को हमार. इसीलिए मैं वृंदावन दास ठाकुर जी के चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूं, और मैं ये आशा करता हूं कि वो मेरा कोई अपराध नहीं लेंगे. इस कार्य के लिए वो मेरा अपराध नहीं लेंगे कि मैंने जो है जो सूत्रों में जो चीजें दी हैं वो मैंने विस्तार रूप से वर्णन किया है, तो ये मेरा अपराध नहीं होगा. दैट इज अगेन द सटल अंडरस्टैंडिंग कि जब उन्होंने जो चीज अभी एक्सप्लेन की है तो वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं किया है. क्या देखा, इनको पता नहीं होगा इसलिए लिखा नहीं था, हमें बता देता हूं, अब मैं बताता हूं, है ना. ये बताने के लिए जो है हमारा आविर्भाव होना तय था. ये इसलिए कर रहे हैं कि वो चीज हमारी सेवा छोड़ दी है, और इसका मतलब ये नहीं कि प्रीवियस आचार्य जो इग्नोरेंट था उसको पता नहीं था, मैं बताऊंगा. वो ये है कि मैं ये चीज अनएक्सप्लेन्ड, हमारे लिए सेवा छोड़ी है, ठीक है हम इसको करें, और इसीलिए साथ साथ ये प्रणाम भी कर रहे हैं कि कोई इस भाव से ना ले, या मेरे अंदर ये भावना है कि मैं जो ये लिख रहा हूं, जो प्रीवियस पूर्ववर्ती आचार्य ने नहीं लिखा हूं, मैं लिख रहा हूं, तो मेरे अंदर दम या अहंकार ना है, इसलिए मैं पूर्ववर्ती आचार्य के चरणों में नमस्कार कर रहा हूं कि इस तरीके से जो है मैं इसका सही रूप से, सही भाव से जो है, सही मनोभाव के साथ जो है इसका वर्णन कर सकूं. तो अब जो है हम दसवा प्यार, ग्यारहवा प्यार. ओके. এই মত মহাপ্রভু চলিল নীল চলে, চারি ভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণ কীর্তন কৌতূহলে. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ইস প্রকাশ জগন্নাথপুরী কী ওর বড়ে चार भक्तों के साथ और भगवान श्री कृष्ण का दिव्य नाम का उच्चारण जो है करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जब बहुत ही उत्साह के साथ बहुत ही लोलुपता के साथ जो है कीर्तन करते हुए जो है आगे बढ़े। तो चार भक्त नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, गदाधर पंडित और मुकुंद, तो सब चारों महाप्रभु के साथ चल रहे हैं महाप्रभु के पीछे पीछे। अब अगला श्लोक जो है बहुत मजेदार श्लोक है। भिक्षा लागी एको दिन एको ग्राम होगीया, आपने बहुत अन्न आनी लो मांगिया। हर प्रतिदिन प्रतिदिन श्री चैतन्य महाप्रभु व्यक्तिगत रूप से एक एक गांव में जाते और बहुत पैमाने में बहुत अन्न बहुत पैमाने में अन्न जो है खाने पीने का पदार्थ जो है वो भिक्षाटन करके लेके आते। ये क्या है, बहुत ही साधु को थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए है ना। तो इसलिए पिछले श्लोक में बताया है कि उनके साथ चार लोग और भी थे, तो इसलिए बहुत तो जो लीडर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो देखे कि मेरे जो डिपेंडेंट है भूखे ना मर रहे हो, खासतौर पर तब जब 21 दिन पैदल चलना है, किन रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स व्हाई ही बॉट लार्ज क्वांटिटी। और यदि भी साधु को कम भिक्षा करनी चाहिए तो यही महाप्रभु के लीला में हम देखते हैं कि जो अपेरेंटली लगता है ये कम करना चाहिए ज्यादा करना चाहिए वो नीड के बेसिस पे होते हैं। तो बार बार श्लोक हम पढ़ के समाप्त करेंगे, दर्शन खुल जाएंगे अभी, तो एक बार हम पढ़ेंगे एक बार आप सब पढ़िएगा फिर हम समाप्त कर देंगे। पथे बड़ो बड़ो दानी विघ्न ना ही करे ता सवारे कृपा करी आईला रे मुनारे। तो इकट्ठे पढ़ेंगे। पथे बड़ो बड़ो दानी विघ्न ना ही करे ता सवारे कृपा करी आईला रे मुनारे। तो रास्ते में बहुत बड़े बड़े नदी थे और हर नदी के पास जो है एक टोल टैक्स जो था वो एक था जो वहां पर जाके जो है कर अदा कर लेते थे। पर उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को नहीं रोका और महाप्रभु ने उन पर कृपा की, जिसके पश्चात जो है महाप्रभु अंततः रेमुना पहुंचे। और इसमें दो लाइन का परपर्ट है श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तो वहां पे एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है बालेश्वर, बालासोर जिसको हम जानते हैं। उससे 5 मील पश्चिम की ओर अगर हम जाएं तो रेमुना नाम का गांव आता है, जहां पे खीरचोर गोपीनाथ का विग्रह अभी भी विद्यमान है। और यहां उसी मंदिर के प्रांगण में श्री रसिकानंद देव जी का जो है समाधि भी है, जो कि श्यामानंद पंडित के मुख्य शिष्य थे। इसके साथ साथ हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चेतामृत की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, अस्तित भक्तवृंद की, ताई गौर सिद्धनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।